नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में गलत तरीके से कारोबार करने में शामिल होने के लिए 11 इकाइयों पर कुल 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में बड़े पैमाने पर गलत तरीके से कारोबार किए जाने का संज्ञान लेने के बाद नियामक ने यह फैसला सुनाया। सेबी ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच इस खंड में शामिल कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की थी। सेबी ने बुधवार को एक अलग आदेश में IFL प्रमोटर्स लिमिटेड के मामले में प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो संस्थाओं पर कुल 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सेबी ने 3M टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। विदेशी तथा निजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों को आसान बनाने के लिए अंतर मंत्रालय स्तर पर चर्चा की जा रही है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। अधिकारी ने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों को आसान बनाने के प्रस्ताव पर अंतर मंत्रालय स्तर पर चर्चा जारी है। हालांकि अधिकारी ने इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। फिलहाल अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ सरकार के जरिए ही उपग्रहों की स्थापना और संचालन के क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति है। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनातनी के बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इससे दोनों देशों के बीच निवेश संबंधों पर तत्कालिक असर पड़ने की संभावना नहीं है। सरकार के इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कनाडा के पेंशन कोषों को भारत में तगड़ा रिटर्न मिल रहा है और उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश किया हुआ है। उन्होंने कहा कनाडा के पेंशन कोष यहां इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें यहां अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि वो मौजूदा स्थिति की वजह से यहाँ से निकल जाएं। उम्मीद है कि ये स्थिति जल्द ही निपट जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने बृहस्पतिवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन से देश की बैंक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को मजबूत बनाने के लिए ग्राहक केंद्रित रुख पर ध्यान देने को कहा। स्वामीनाथन ने यहां प्रमुख बैंकों के निदेशक मंडल में ग्राहक सेवा समिति के प्रमुखों, प्रबंध निदेशकों, ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रभारी कार्यकारी निदेशकों और प्रमुख नोडल अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक की। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान चर्चा ग्राहक सेवाओं को और बेहतर बनाने पर केंद्रित रही। इसमें शिकायतों का तुरंत समाधान करना, शिकायत निपटान व्यवस्था को दुरुस्त करना, ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाना, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के लिए अधिक जागरूकता तथा जिम्मेदार नीतियाँ बनाने की आवश्यकता शामिल है। सरकार ने परिवहन वाहनों के लिए पंजीकृत ऑटोमेटेड परीक्षण स्टेशन के माध्यम से अनिवार्य फिटनेस परीक्षण की तारीख 4 महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दी है। पिछले साल अप्रैल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था 1 जून 2024 से भारी, मध्यम और हल्के माल और यात्री वाहनों को अनिवार्य रूप से स्वचालित परीक्षण स्टेशनों पर जांचा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा अनिवार्य परीक्षण की तारीख अब 1 अक्टूबर 2024 अधिसूचित की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा यह भी अनिवार्य है कि वाहन का फिटनेस परीक्षण केवल ATS के माध्यम से किया जाएगा। विदेशी बाजारों में मामूली घट बढ़ के बीच बृहस्पतिवार को देश के तेल तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन छोड़कर बाकी सभी खाद्य तेल तिलहन कीमतों में गिरावट देखी गई। कम स्टॉक के बीच मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। देश में सस्ते आयातित तेलों की भरमार के बीच सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल और पामोलिन तथा बेनोला तेल गिरावट दर्शाते बंद हुए, लेकिन MRP अधिक तय किए जाने की वजह से उपभोक्ताओं को खाद्य तेल महंगे में ही खरीदना पड़ रहा है। मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में मामूली घट बढ़ है। सूत्रों ने कहा कि देश के प्रमुख तेल संगठनों को बंदरगाहों पर आयातित तेल लागत से कम दाम पर बेचने वालों के नाम का खुलासा करना चाहिए जो बैंकों से लिए कर्ज को डुबा रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।